सब लोग हाथ जोड़े मेरे पीछे बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मुक्तस्य बाल्य कैशोरे तीरतो याति विंशतिः जराग्रस्त देहस्य यात्य कल्पस्य विंशतिः। मुक्तस्य मोहग्रस्त या पूर्ण ज्ञान में न होने वाले व्यक्ति का बाल्य बचपन में कैशोरे किशोर अवस्था में क्रीडतः खेलते हुए यादि बीतता है, विंशति 20 वर्ष चर्या वृद्धावस्था से ग्रस्त देहस्य ग्रस्त मनुष्य का याति बीत जाता है, अकल्पस्य बिना संकल्प के क्योंकि भौतिक कार्यों के करने में असमर्थ रहता है, विंशति ही और 20 वर्ष। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। पहले आप मेरा ध्यान से सुनिए, उसके बाद आप पीछे पीछे दोहराएं। पहले आप ध्यान से सुन लीजिए पूरा अनुवाद। मनुष्य अपने बाल्यकाल की सुकोमल अवस्था में जब सभी मोहग्रस्त होते हैं 10 वर्ष बिता देता है, इसी प्रकार किशोर अवस्था में वह अगले 10 वर्ष खेल कूद में लगकर बिता देता है। इस प्रकार से 20 वर्ष व्यर्थ चले जाते हैं। इसी तरह से वृद्धावस्था में जब मनुष्य अक्षम हो जाता है और वह भौतिक कार्यकलाप भी संपन्न नहीं कर पाता, उसमें उसके 20 वर्ष और निकल जाते हैं। अब मेरे पीछे अनुवाद आप दोहराएं। मनुष्य अपने बाल्यकाल की सुकोमल अवस्था में जब सभी मोहग्रस्त होते हैं 10 वर्ष बिता देता है। इसी प्रकार किशोर अवस्था में वह अगले 10 वर्ष खेल कूद में लगकर बिता देता है। इस प्रकार से 20 वर्ष व्यर्थ चले जाते हैं। इसी तरह से वृद्धावस्था में जब मनुष्य अक्षम हो जाता है और वह भौतिक कार्यकलाप भी संपन्न नहीं कर पाता, उसमें उसके 20 वर्ष और निकल जाते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी का श्री प्रभुपाद की कृष्ण भावनामृत के बिना मनुष्य 20 वर्ष बाल्य अवस्था तथा किशोर अवस्था में तथा अन्य 20 वर्ष ऐसी वृद्धावस्था में बिताता है जब वह कोई भी भौतिक कार्य ठीक से नहीं कर पाता और उस चिंता में घिरा रहता है कि वो अपने लड़कों तथा नातियों के लिए क्या करे और अपनी संपत्ति की किस तरह रक्षा करे। तो हम लोग तात्पर्य को गहराई से समझेंगे। ये प्रभुपाद जी का लेक्चर हुआ था 9 दिसंबर 1975 लॉस एंजलिस में, तो उससे भी मैंने कुछ चीजें करी है, नेक्टर ऑफ डिवोशन से भी ली है और गर्ग संहिता से, तो निचोड़कर हम सब जो है कक्षा का आनंद उठाएंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, महत्वपूर्ण विषय है और गृहस्थ जीवन में इसमें हम लोग को काफी शिक्षा मिलती है और जो ब्रह्मचारी है उन लोगों को भी ज्ञान मिलता है कि कैसे गृहस्थ जीवन की कष्टों से अपने आप को बचा कर रखे। तो आप सब लोग और ध्यान से सुनिए इसे, बाकी और जोश आएगा। तो पहला जो शब्द प्रभुपाद ने इस्तेमाल किया कि मनुष्य 20 वर्ष बाल्य अवस्था तथा किशोर अवस्था में भी 20 वर्ष बिताता है। तो बाल्य अवस्था जो स्थिति है वो क्या है, बिल्कुल खेल कूद में बिताने की होती है। पर उसमें भी श्रीमद् भागवतम में 3 ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने बाल्य अवस्था में भी कृष्ण की प्राप्ति करी है। पहला ध्रुव महाराज, दूसरा नारद मुनि, तीसरा प्रहलाद महाराज। तो ये 3 भक्त ऐसे हुए जो 5 साल से उन्होंने अपनी भक्ति प्रारंभ करी। और श्रील प्रभुपाद जी भी ये बार बार इस चीज का बल देते हैं और चाणक्य पंडित का भी प्रभुपाद जी सुधार करते हैं कि 5 साल की उम्र तक क्या होना चाहिए, लालन लालन पंच वर्षाणी। तो जो बच्चा है, जो छोटा बच्चा है, वो 5 साल की अवस्था तक उसको लालन, प्रेम, प्यार, लाड, पैम्परिंग ऐसे करना चाहिए। और ताड़न 10 वर्ष आने, जैसे 10 वर्ष होते हैं, 5 से 10 वर्ष तक उसको फिर स्ट्रिक्टनेस, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, तो उसको फिर स्ट्रिक्टनेस लानी शुरू करनी पड़ती है, अनुशासन में उसको लाना शुरू करना पड़ता है। तो 5 साल की अवस्था तक जो है हम लोग बच्चे को छूट दे सकते हैं, और 5 साल के आगे जो है उसकी ट्रेनिंग शुरू करी जाती है, क्योंकि बच्चा बहुत जल्दी जल्दी अपने मानसिक विकास करता रहता है और इस कारण वो भ्रमित होना शुरू हो जाता है। तो 5 साल तक तो उसको हम छूट दे देते हैं, पर उसके आगे छूट नहीं दी जाती। पर ये उन लोगों के लिए है जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं केवल वो लोग, वो ब्रह्मचारी जो अपने आप को पूरी तरह से ब्रह्मचार्य व्रत का पालन नहीं कर पाते हैं, वही ग्रस्त जीवन में जाए, अन्यथा ग्रस्त जीवन में जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि ब्रह्मचार्य का जीवन ऐसा जीवन है, जिसने ये जान लिया कि मेरा ये जो जीवन मिला है 84 लाख योनियों में, यही एक ऐसा समय है जिससे मैं भगवान के धाम वापस जा सकता हूं, तो उससे अच्छा कोई और अवस्था है ही नहीं, कोई और आश्रम है ही नहीं ब्रह्मचार्य के अलावा। क्योंकि इतनी कठिनाइयां, इतने परेशानियां ग्रस्त जीवन में आ जाती हैं, जिससे व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, इतने ज्यादा बंधन आ जाते हैं कि वो उसी में फंसा रह जाता है। तो 5 साल की अवस्था जो है वो महत्वपूर्ण मानी गई है, पर ये 5 साल जो है प्रभुपाद कह रहे हैं धीरे धीरे इसके श्लोक के अनुसार वो 20 साल बन जाएंगे आगे। और होगा क्या धीरे धीरे आगे कि व्यक्ति आगे, इसमें शब्द इस्तेमाल के श्रीमद् भागवतम में जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापे तक पहुंच जाता है और तब भी उसकी आसक्ति खत्म नहीं होती है, उसका ध्यान कहां लगा रहता है बुढ़ापे में भी, अपने परिवारजनों में। तो एक बड़े विनोद की एक जो आनंद लेते हैं भक्त लोग, उस पर एक जगह पे मैंने सुना था कि एक बड़ा कंजूस व्यक्ति था, तो उसने अपने मुनीम से पूछा कि मेरे पास धन कितना है। तो उसने कैलकुलेशन किया, सारा किया, बोला जी आपके पास में इतना धन है कि आपकी 7 पीढ़ियां खा सकती हैं। कितनी पीढ़ियां? तो वो रोने लग गया। मुनीम ने बोला क्या कारण है, क्यों रो रहे हो? मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, 7 पीढ़ियां बच जाएंगी पर 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, और उसने सर पकड़ लिया। तो मुनीम जी ने बोला कि आप चिंता मत करो, यही आगे आगे बढ़ता जाएगा और आपका वो भी पीढ़ियां भी होती रहेगी। पर वो इतना ज्यादा चिंताग्रस्त हो गया कि रात भर सो नहीं पाया। तो उसकी पत्नी ने उसको बोला कि आप एक काम करो, आप इस चिंता से मुक्त होने का तरीका क्या है कि उस पास के मंदिर में एक ब्राह्मण बैठा हुआ है, तो सुबह जाके कुछ उस ब्राह्मण को आप दान दे देना, कुछ आटा दे देना, कुछ दे देना, तो उससे आपका कष्ट भी दूर हो जाएगा। तो कंजूस था तो कष्ट में पहले से ही था, पत्नी दान की बात करी तो और कष्ट में आ गया बेचारा रात भर में। फिर भी किसी ना किसी तरीके से सोच के वो गया, आटा लेकर उस ब्राह्मण के पास में गया और दिया उसको। तो उसने उस आटे में से थोड़ा सा आटा निकाला और बाकी आटा वापस किया, बोला कि मुझे इतना ही चाहिए, इससे मैं संतुष्ट हूं। बोला क्यों, आप रख लो? कहते नहीं, ये मेरे आज के लिए काफी है, इससे मैं आज संतुष्ट हूं, बाकी आप जो है इसको ले जाओ। अरे, तो उसने बोला कि आप इसको भी रख लो, ये आपके कल या परसों काम आ जाएगा। कहते नहीं, कल किसने देखा, परसों किसने देखा, आज किससे संतुष्ट हूं, आगे का मैं आगे देखूंगा। तो उसको वो बात इतनी ज्यादा घर कर गई कि एक ब्राह्मण अगले दिन के लिए चिंता नहीं कर रहा और मैं 7 पीढ़ियों के बारे में चिंता कर रहा हूं, तो उसने सब चीजों को त्याग करके आके भगवान की शरण में आ गया। तो हम लोगों को ये चीज को बहुत ध्यान से समझना चाहिए कि ग्रस्त जीवन में आते आते ये सब चीजें हम लोगों को फंसाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने बताया ना इसमें कि नाता नातियों के में आते आते वो संपत्ति की रक्षा के अंदर भी लगा रहता है। एक और उदाहरण शिला प्रभुपाद जी और भक्त के उसमें आता है कि एक नारद मुनि और कैलाश की कथा है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है कैलाश, तो नारद मुनि वैकुंठ जा रहे होते हैं, बोलते कैलाश चले यार चले ऊपर, चलते जो वैकुंठ घुमा के लेकर आता हूं। बोलता नहीं, कहता कैसी बात कर रहे हो नारद जी, मेरा पुत्र अभी तो छोटा पुत्र है, मेरा उसको ध्यान रखना है, उसको करना भी नहीं आ सकता। बोलता कोई बात नहीं, बहुत साल बीत गए, फिर आए कैलाश, अब चल मेरे साथ में। बोलता नारद जी अब तो मेरे पुत्र का पुत्र हो गया, अब तो मैं दादा बन गया, आप मिठाई खाओ, अब तो मेरी बिल्कुल भी नहीं जा सकता, कोई उस पुत्र के पुत्र को कौन ध्यान रखेगा। नारद मुनि फिर देख रहे, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे कर रहे हैं। तीसरी बार नारद जब आए तो वो दिखाई नहीं दी, पे है कहां पर नारद मुनि, इसको ढूंढ रहे है कहां पर, तो देखा कि बड़े ध्यान से दिव्य दृष्टि से देखा कि वो कुत्ता बना हुआ है। तो नारद मुनि बोला क्या हुआ, कहता ना भाई मेरे पुत्र का जो पुत्र है और पुत्र दोनों के दोनों मूर्ख हैं और अपने जो है धन का ध्यान नहीं रखते हैं और धन जो है वो कोई चोर ना चोरी कर ले, इसलिए मैंने जो है चिंतन करते करते क्या लिया, अगला जन्म कुत्ते का लिया और अब मैं कुत्ते की तरह भौंकता रहता हूं और यहां पर जो है किसी को वो धन के ऊपर जो वो चुराने की कोशिश नहीं करने देता, पूरा धन पे कंट्रोल करता हूं। तो कहता तुम तो फिर चलोगे नहीं, कहता नहीं चलोगे। बोलता कोई बात नहीं। नारद मुनि फिर आते हैं, इस बार देखते कुत्ता भी नहीं है और वो पीढ़ी की पीढ़ी बीत गई है, अब देखे क्या करें, तो देखा एक सांप आ रहा है कहीं से, फिर दिव्य दृष्टि देखा, अरे कैलाश अब तुम क्या सर्प बन गए। बोले नारद मुनि बड़ा प्रसन्न हो, बोलते क्यों, बोले मेरे पुत्र के पुत्र जो है और मेरे नाती नातियां जो है वो बड़े ही ज्यादा अब वो अपनी जिम्मेवारी समझ रहे हैं और उन्होंने पैसे को कंट्रोल में किया, पर इतने मूर्ख हैं कि जो धान की खेती हो रही है धान के ऊपर वो ध्यान नहीं दे रहे, तो रात को लोग चोरी चोरी करते हैं, इसलिए मैं सर्प बन के क्या करता हूं उन सबको वहां से भगाता हूं, अब मैं धान और उसकी रक्षा कर रहा हूं। तो नारद मुनि ये तो मानने नहीं वाला, तो नारद मुनि ने अपना रूप प्रकट किया और सब उनके पुत्र जो थे उसी को बताया, देखो सांप घूम रहा है यहां पर, तो उन्होंने उठा के लाके अपने सांप को मारना शुरू कर दिया। बोलते नहीं मैं सांप नहीं हूं, वो बोलने लगा मैं तुम्हारा पूर्वज हूं, मुझे मत मारो, और लाठियों से ही उन्होंने उसको मार डाला और उसको अकल आ गई, उसने फिर अगला जन्म एक कृष्ण भक्त का लिया और नारद मुनि के अनुसार क्या किया, अगला जन्म में वो भगवान कृष्ण का एक महान भक्त बना। तो हम लोगों को यहां भी देखना है कि कैसे व्यक्ति की आसक्ति इस जन्म के उपरांत नहीं, इस जन्म के आगे 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 भी चली जाती है। जो देश के उसमें ध्यान में लगे रहते हैं, जो इजम्स में होते हैं, कम्युनिज्म सोशलिज्म सोसाइटी के बीच में, तो उनका ध्यान भी वहीं रहेगा और यमयम वापि स्मरण भावम के अनुसार अगला जन्म भी वैसे ही मिलेगा। प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है कि भृगु संहिता के अंदर प्रभुपाद जी डिटेल में गए हैं, इसको बाहर आप कोट ना करिएगा, पर जवाहरलाल नेहरू का अगला जन्म भी एक कुत्ते का ही हुआ। क्योंकि उसका इतना ध्यान था हिंदुस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान हिंदुस्तान, ये मेरी जगह है, जैसे कुत्ता भी अपनी जगह पर शेर होता है, वो इस तरीके से इतना ज्यादा ध्यान था, तो क्या वो भगवान ने बोला तेरा इतना ध्यान है तो क्या कर, अगला जन्म भी ऐसे। तो ये चीजों को हम लोग को बहुत ध्यान देना चाहिए। भागवतम में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कि दादा और दादा अपने पोते पोतियों को अपनी गोद में खिला रहे हैं, पूरी भागवतम में देख लो कहीं नहीं मिलेगा, आज मेरा पोता है मेरा पोते ले पोते को खिला रहे हैं, तू मेरा वंश को आगे बढ़ा रहा है। नहीं, जैसे 50 साल की उम्र हुई वानप्रस्थ को अपनाया, वानप्रस्थ के बाद संन्यास को ले लिया उन्होंने, कहीं पर नहीं आता। धृतराष्ट्र कुछ दिन तक रहे थे वहां पर जरूर, पर तब भी ना उनको विदुर जी ने समझा दिया था कि यह जगह तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है, यहां से तुम फटाफट चले जाओ, तुम कब लोगों के एक फेंके हुए बोटियों के ऊपर तुम कैसे जियोगे, ये शब्द का इस्तेमाल किया विदुर जी ने, कहीं नहीं मिलेगा। भीष्म पितामह तो अपने बंधन से अपने वचन से बंधे हुए हैं इसलिए वहां पर वो रह रहे हैं, अदरवाइज उनको कोई मतलब नहीं, कहीं मिलता ही नहीं। और हम लोग दादा पोते इस तरह से लगे हुए हैं, फिर प्रश्न उठता है कि इस्कॉन के अंदर ऐसा क्यों है। इस्कॉन में श्रीला प्रभुपाद ने समय स्थान परिस्थिति के अनुसार यह स्थिति बनाई गई है, पर उसमें भी पूर्ण एंगेजमेंट बताया गया है, यह नहीं बताया गया कि आप लोग खाली बैठे रहो, आप अपने जीवन को 50 साल के बाद इस तरह से अपने को बिताओ कि वो जो अवस्था है वो भक्ति की एक परिकाष्ठा बन जाए। एक बार श्रील प्रभुपाद जी अपने भक्तों के बीच में बैठे हुए थे, अपने शिष्यों के बीच में, तमाल कृष्ण गोस्वामी उनके बीच बैठे थे। बड़े ध्यान से समझने की बात है, प्रभुपाद ने बोला अपना जीवन भक्ति में लगाओ, सब लगाओ, और जब तुम थोड़ी वरिष्ठ हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, तो मायापुर जाकर क्या करो, कीर्तन करो, है ना, और वहां पर भगवान का पास टाइम करो और एक तरीके से रिटायर हो। सब बड़े ध्यान से सुन रहे थे, पर प्रभुपाद ने बोला मैं इतना मैच्योर नहीं हूं कि मैं रिटायर हो जाऊं, तुम लोग रिटायर हो जाना। तो सब हिल गए। तो प्रभु ने प्रभुपाद जी कह रहे कि मैं मैच्योर नहीं हूं और मुझे रिटायर नहीं होना, तो और हम लोग को रिटायर होने के लिए बात कह रहे, ये क्या बात हो रही है प्रभुपाद, प्रभुपाद हमसे बूढ़े भी हैं, सब हैं। तभी तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने उठे और बोला कि प्रभुपाद अगर आप मैच्योर नहीं हुए तो हम तो जीवन भर कभी मैच्योर नहीं हो सकते, इसलिए हम कभी रिटायर होंगे ही नहीं, हम हर समय ही क्या करेंगे, कृष्ण भावना भवित बनते हुए ही अपना जीवन बताएंगे, और अंत समय में भी हम यही सोचते सोचते अपने शरीर को त्यागेंगे। यही प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में अंत में भी करके दिखाया। 1977 में प्रभुपाद जी कहीं बैठे नहीं थे, कहीं वो आके अपने हॉस्पिटल में भी नहीं गए, प्रभुपाद जी किसी आश्रम में भी नहीं गए, पर भागवतम के 10वें स्कंद का अनुवाद करते करते और उसकी परपट्स को बताते बताते उन्होंने अपने शरीर को त्याग। तो उसी तरीके से हम लोगों को भी अपने जीवन को इस तरह से चलाना है, नहीं तो जैसे इसमें बताया गया इस चिंता के घेरे में हमारा क्या होगा, चिंता क्या बन जाएगी, उसमें से बिंदी निकल जाएगी और चिंता क्या बन जाएगी, चिता, और उसी के अंदर हमारा अगला जीवन जो है वो भी चिता समान ही हो जाएगा। इसीलिए जड़ भरत को पता था, जब उन्होंने अगला जीवन एक हिरण का लिया, उनको पता था कि मैंने क्या गलती करी है, और इसीलिए हिरण के शरीर में रहते हुए उन्होंने अपने रिलेटिव्स के साथ में कभी साथ में नहीं रहते थे, रिश्तेदारों को दूर रखा, मतलब जो हिरण रिश्तेदार थे उनको दूर रखा, उनके संग में नहीं बैठे रहते थे, और इसी युद्ध ध्यान में ही उन्होंने अपना अगला जन्म जड़ भरत का लिया। पहले भरत महाराज थे, भरत महाराज के बाद वो हिरण के शरीर में आए, फिर वो जड़ भरत बने, क्योंकि उनको पता था कि मैंने अगर फिर से वो गलती दोहरा दी तो फिर वो ना फंसो। लोमस ऋषि का उदाहरण आता है, लोमस ऋषि बोलते हैं, जब लोमस ऋषि के बारे में बताया गया कि जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, जब ब्रह्मा जी अपने शरीर को त्याग के, मतलब ये ब्रह्मांड पूरी तरह से नित्य नैमित्य और प्राकृत्य तीन प्रलय है, तो प्राकृत्य प्रलय जब होता है, जब पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है, महाविष्णु के अंदर चला जाता है, श्वास से अंदर चला जाता है, उसको प्राकृत्य प्रलय कहते हैं, जब वो होता है उस समय ब्रह्मा जी की मृत्यु मानी जाती है, ब्रह्मा जी शरीर त्यागते हैं, ब्रह्मा जी जो है वो भगवान के धाम चले जाते हैं, उस समय लोमस ऋषि के छाती का एक बाल गिरता है। तो आप सोचिए लोमस ऋषि की उम्र कितनी होगी, तो लोमस ऋषि, किसी ने पूछा ऋषि महाराज भगवान आप अपनी कुटिया क्यों नहीं बनाते हो, तो क्या आप जवाब देते हैं कि जीवन इतना छोटा है, जीवन इतना थोड़ा है कि मैं कुटिया बना के क्या करूंगा, और हम लोग हर जीवन ही इसी में बिता देते हैं कि एक कुटिया हो या दो कुटिया हो, हम कुटिया के अंदर ही अपने आप ना बनाना शुरू कर देते हैं अपना जीवन, घर बन जाए, किसी तरह से घर बना दूं, अपने बच्चे को सेटल कर दूं, उसी में अपना जीवन करता है, अगर मैंने अपने बच्चे के लिए कुछ किया नहीं तो मेरा सारा जीवन व्यर्थ हो गया। तो हमें यह बात को बहुत ध्यान से समझना चाहिए, प्रभुपाद जी ने यह आंदोलन बनाया गया है, इस आंदोलन को प्रभुपाद जी ने स्पष्ट नाम बताया गया हरे कृष्ण भावनामृत का यह आंदोलन है, और इसमें केवल हम लोगों को क्या प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए करना, वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, और कोई कार्य नहीं है। प्रभुपाद ने बोला कीर्तन करो, भक्तों का संग करो, नाचो, जैसे रुक्मिणी और आप लोग नाच रहे थे, इतना आनंद आ रहा था देखते हुए, भक्तों के मुख पे ऐसा आनंद दिखता है कि जो किसी भी भौतिक संसार में अरबपति से अरबपति के मुंह पे भी नहीं दिख पाता है, क्योंकि उनके साथ में हर चीज क्या रहेगी आपको दिखेगी, वो हर चीज ग्रस्त होते हैं, किसमें, टेरा माइसिन, एरिथ्रो माय सिन, क्लोरो माय सिन, ये दवाइयों में होते हैं, पर इसके आगे इसलिए वो लगा माय सिन, मेरे पापों के साथ ये दवाइयां खाकर से सोते हैं और माय सिन में ही अपना जीवन कर रहे होते हैं। और भक्त लोग इतना आनंद लेते हैं, कितना आनंद आ रहा था, मतलब प्रभु जी जब वो बोल रहे थे और ग्लोरी सिंबल डिवोटीज वो भी काफी आनंद लेके बोल रहे थे, इतना अच्छा मतलब ग्लोरीज को भी आनंद ले रहे हैं बताओ करने के लिए, भक्तों की ग्लोरीज के लिए भी अभूतपूर्व। इसलिए पंजाबी बाग मंदिर जो है ये इसने अपनी जगह बना दी है पूरे विश्व में, नहीं पूरे ब्रह्मांड में, ऐसे भक्तों का समूह है, ऐसे भक्तों का आपस में प्रेम है, कॉपरेशन है, ट्रस्ट है, जो बाकी मंदिर भी इस तरह से आगे बढ़ जा रहे हैं। प्रभु जी रुक्मिणी कृष्ण है तो इन्हीं से ही रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर आगे बढ़ा, यहां से भक्त वहां भी गए हैं, रोहिणी मंदिर में भी गए, तो भक्तों के समूह में सब लोग जो है ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मुझे भी प्रभु जी की वजह से काफी कुछ सीखने को मिला है, तो मैं हर वक्त इनका आभारी रहूंगा। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, इनमें से आधे वर्ष नींद में निकल जाते हैं, जो 100 वर्ष है उसमें आधा रात के समय सोते सोते क्या हो जाता है, आधे वर्ष निद्रा में। और हमारे जो सारे षड गोस्वामी कहते हैं निद्रा विहार, कि निद्रा नींद जो है वो क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम। और यहां पर लगता है कि रात को नींद ना आए, और सुबह अगर बहू ने सास से नहीं पूछा कि मां तुम रात को ठीक से सोई थी, तो सास बहू के पीछे बढ़ जाती है, होता है कि नहीं होता, कम से कम तुझे इतनी चिंता नहीं है, ये तो पूछ ले कि मैं रात को सोई हूं कि नहीं सोई हूं, और सो भी नहीं होती तो बोलती मैं तो सोई नहीं रही हूं, मैं तो हरे कृष्ण महामंत्र कर रही हूं पूरा, बिल्कुल आंखें बंद है, पूरा ध्यान मग्न होकर मुनि की तरह बैठे हुए हैं, पूरा ऋषि की तरह होते हैं, और वो नहीं मैं तो महामंत्र, मुझसे कोई भी बात पूछ लो मुझे सब कुछ याद है, मैं अभी तक का जो मेरे साथ बात हुई है यहां पर, तुम मेरे कमरे में कब आई, सब हुआ तो सब कुछ बता दूंगा, मैं बता दूंगी, मैं सोई नहीं हूं वहां पर, निद्रा नींद नहीं आनी, बस सबसे खराब बात लगती है, दवाइयां लेंगे, साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, कहीं जाएंगे, बस नींद किस तरह मिल जाए। और शिला प्रभुपाद केवल 3 या 4 घंटे तो बहुत दूर की बात है, कभी कभी 2 घंटे भी नहीं सोया करते थे, रात के 1 बजे उठ जाया करते थे शिला प्रभुपाद। और लीलामृत में बताया जाता है कि वो अपना कार्य जो है पढ़ने का शुरू करते थे, लिखने का शुरू करते थे, क्योंकि उनको लगता था इससे अच्छा कोई और समय नहीं है, मुझे कोई और डिस्टर्ब नहीं करेगा। और यहां तक बताते कि वृंदावन में जब वो ट्रांजिशन कर रहे हो रहे थे, तो अगले दिन उन्होंने टेम्पल प्रेसिडेंट को बुलाया और पूछा, रात को चौकीदार सो रहा था, बोलते क्यों प्रभुपाद जी ऐसा क्यों आप पूछ रहे, कि रात को जो घंटी थी वो रात के 1 बजे उसने बजाई नहीं, 2 बजे भी उसकी 2 बार बजानी, पर 1 बार बजा के फिर उसकी घंटी आगे बजी नहीं, सो गया वहां पर। तो प्रभुपाद ने बहुत पावरफुल स्टेटमेंट दिया, द रिंगिंग ऑफ बेल ऑन टाइम डिपिक्ट्स द मैनेजमेंट ऑफ द टेम्पल। एक कार्य से प्रभुपाद ने उदाहरण बना दिया कि अगर समय पर सिक्योरिटी गार्ड ही अगर टेंपल की बेल टाइम पे नहीं बजाता है, अगर समय पर एक छोटा सा व्यक्ति जो बाहर बैठा हुआ है अगर वही कार्य नहीं करता है, उससे पूरे टेंपल का मैनेजमेंट पता चल जाता है, बाकी कार्य देखने की जरूरत ही नहीं होती है। प्रभुपाद जी का इतना महान गुण हुआ करता था। तो प्रभुपाद जी ने यह चीज उदाहरण देकर हम लोगों को बहुत तरीके से समझाया है कि हमें कैसे बुढ़ापे के अंदर और उसमें भी हमें भक्तों का संग कैसे लेना है, और अपने उनके शिष्य भी इस तरह से लगे हुए हैं, सारे शिष्य जो प्रभुपाद जी के वो सोते नहीं है। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एयरपोर्ट से उतरते हैं, 2 बज रहे हैं, 1 घंटा अपने आपको फ्रेश किया, अगर थोड़ा आंख बंद करी उसके बाद ऑल्टर में सीधा दिख जाएंगे, ऑल्टर से निकले बाहर आए, समय कुछ हुआ नहीं हुआ, लुधियाना के लिए निकल गए, लुधियाना से आए देखा कुछ सब काम ठीक चल रहा है, पंजाबी बाग मंदिर के लिए राधा पार्थ सर से निकल गए, क्योंकि वो देखते हैं कि हर क्षण अगर मैंने कृष्ण की प्रसन्नता में शिला प्रभुपाद की प्रसन्नता में बिता दिया तो वही मेरे जीवन को कृष्ण भावना भावित बना सकता है, अन्यथा मुझे कुछ और कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं सेवक हूं, या तो मैं माया की सेवा करूंगा या तो कृष्ण की सेवा करूंगा। तो भक्तों को यह चीज ध्यान से रखनी चाहिए, और ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर जैसे हम आगे पढ़ रहे हैं कि भक्त जो है वो केवल अपने भक्ति में लगे रहे और उसके बाद बाकी लोगों को ध्यान ना दें। अगर जो घर में बूढ़े हैं सब हैं, अगर कृष्ण भक्त हैं, तो प्रभुपाद जी यहाँ तक कहते हैं कि अपने माता पिता और उनकी भी सेवा करनी चाहिए। कभी कभी ये आरोप आता है कि नहीं, भक्त लोग हैं अपने माता पिता का ध्यान ही नहीं देते हैं, वो निकल जाते हैं। वो एक बहुत आगे की स्थिति होती है कि सब अगर घर के अंदर कलह और कलेश और उसकी भक्ति के ऊपर थोड़ा विघ्न आए तब है, नहीं तो बहुत जगहों पर भक्तों को ये देख बताया जाता है कि कैसे वो ऐसा आदर्श प्रस्तुत करें कि उनको देख के बाकी लोग भी इंस्पायर हो, शिला प्रभुपाद का नाम रोशन हो, ऐसा वो अपनी सेवा करके दिखाएं, अपने में, अपने रिश्तेदारों के बीच में भी और अपने भक्तों के भी, अपने माता पिता के सामने भी। प्रभुपाद जी गिरिराज महाराज को स्पेशल बोला था कि आप जाओ और अपने माता पिता, आप अकेले पुत्र हो और उनकी सेवा करो। प्रभुपाद जी ने ऐसे बहुत उदाहरण दिए हुए कि माता पिता अगर भक्त हैं तो उनकी सेवा करना बहुत अनिवार्य है। चैतन्य चैतामृत में आता है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को क्या बोला प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने कि आप जाओ और अपने माता पिता को सेवा करो और जब वो शरीर छोड़ दे तो आप पूरी तरीके से। शास्त्रों में एक और उदाहरण आता है तो आप लोग सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा और बहुत लोगों ने सुना होगा। पुंडरीक का उदाहरण आता है, पंडरपुर में जो भगवान विट्ठल है, जो महाराष्ट्र में विट जो शब्द है उसको बोला जाता है ईंट, और ठल मतलब देखा जाता है कि खड़े रहने को। तो पुंडरीक जो थे, संक्षेप में सुनाऊंगा पर महत्वपूर्ण बात क्या है उससे आपको बहुत आनंद आएगा। उसकी दो कथाएं साथ में जुड़ी है, वो कुक्कुट मुनि की और पुंडरीक, इन दोनों की कथाएं हैं। तो पुंडरीक जो है वो बड़े अच्छे भक्त थे पर संग उनका खराब हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पत्नी के कहने पर, पत्नी के साथ रहते हुए पत्नी के कहने पर उन्होंने अपने माता पिता को अपने घर से बाहर निकाल दिया। माता पिता बहुत बूढ़े थे, कृष्ण के भक्त थे, पर फिर भी वो उनको आशीर्वाद देते हुए काशी चले गए और बहुत समय तक जो है पुंडरीक अपनी पत्नी के साथ रहा। पर क्योंकि उसने कृष्ण भक्ति करी हुई थी, जैसे नारद मुनि ने कृष्ण भक्ति करी हुई थी, नारद मुनि ने अपनी माता की पूरी तरह सेवा करी और जब माता को एक सर्प ने काटा उसके बाद वो कृष्ण भक्ति के लिए जंगल में जाना शुरू कर दिया। उन्होंने तब तक उन्होंने माँ की सेवा करी और वहां पर सेवा करी पूरी तरह। तो पुंडरीक ने अपने माता पिता को ढूंढने के लिए अपनी पत्नी के साथ चले और बहुत ज्यादा प्रायश्चित कर रहे थे। तो रस्ते में एक मुनि का आश्रम आया, उस मुनि का नाम था कुक्कुट मुनि। तो रात को विश्राम किया और उन्होंने देखा कि जो कुक्कुट मुनि है वो इतने बड़े मुनि होकर भी बहुत समय अपना बिता रहे हैं, कैसे, अपने माता पिता की सेवा करने में। तो रात जब हुई तो उन्होंने ध्यान से देखा कि तीन स्त्रियां रात को आती हैं और मुनि के आश्रम को साफ करती हैं और इतनी दूषित है, मैली है और कपड़े इतने गंदे हैं उनके कि वो बिल्कुल दिखने में एकदम दरिद्र दिख रही है। और जैसे जैसे मुनि के आश्रम को साफ कर रही होती है वैसे वैसे उज्जवल होती जा रही है और एकदम सुंदरता प्रकट कर देती है अंदर ही। तो ये गए और उनसे बोला कि हे माता आप कौन हो, तो बोली मैं गंगा, मैं यमुना और मैं सरस्वती हूं। तुम्हारे जैसे पापी जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते और कुकर्म करते हैं उनकी वजह से मैं दूषित हो जाती हूं और मैं यहां पर आती हूं इन मुनि के आश्रम में सफाई करने के लिए, क्योंकि ये अपने माता पिता की सेवा करते और महान भक्त हैं और उनकी सफाई करते करते उनके आश्रम की मैं वापस उज्जवल हो जाती हूं। तो उनको और ज्यादा प्रायश्चित हुआ, फिर उन्होंने अपने माता पिता को बुला के लेकर आए और उनकी बहुत सेवा करी और फिर भक्ति में आगे बढ़े। ऐसी अजामिल की कथा आती है कि अजामिल ने भी जो है अंत में उनको भी अकल आई और उन्होंने भी अपने माता पिता को बुलाया और उनकी खूब सेवा करी। तो माता पिता की हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर वो भक्त हैं और अगर अभक्त भी है, यहां तक तो आप हैरान हो जाएंगे, केशव भारती महाराज और गिरिराज महाराज इनों की एक किताब भी जो गिरिराज महाराज की निकली है, लाइफ फाइनल एग्जामिनेशन, एक बुक किताब है, अगर उसमें डिटेल में जाएंगे तो वो अंत समय में वो अपनी माता पिता की ऐसी सेवा करते हैं कि माता पिता कभी कभी उनको लाते भी मार रहे होते हैं पर वो भी सहन करते हैं, क्योंकि उन्होंने 10वें स्कंद के अंदर श्री कृष्ण का वो एक श्लोक अपने जीवन को कंठस्थ कर दिया था उन्होंने। अपने कंठ के साथ लगाया था कि अगर माता पिता को हम अगर प्रसन्न नहीं कर पाते हैं और माता पिता के हम ऋण से कभी भी जीवन भर मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें हमें संसार में आने का मौका दिया है। और जो व्यक्ति अपने माता पिता को प्रसन्न नहीं कर पाता है, बूढ़े माता पिता को, अगर वो वानप्रस्थ और संन्यास में नहीं गए हुए हैं और घर पर ही है इस तरह से, तो वो अपने मांस को खाने का ही उसको पाप लगता है। गिरिराज महाराज ने ऐसी ऐसी स्थिति में अपने माता पिता की सेवा करी कि पिता जो है वो उनको देखने तक नहीं चाह रहे और वो तब भी उनके चरणों को दबा रहे हैं और उनको पूरी तरह कृष्ण भावनामृत का उनको आस्वादन करवा रहे हैं। केशव भारती महाराज की माता इतनी ज्यादा अहंकारी है, वो कुछ नहीं सुनना चाहती, पर अपने पुत्र की भक्ति को देखकर शिवराम स्वामी महाराज उनको क्या करते हैं, हरिनाम की दीक्षा देते हैं। अंत समय में केशव भारती महाराज जो वो गिड़गड़ा रहे हैं, बोलते कि हे शिवराम महाराज, हे महाराज, आप कृपा करो कि मेरी मां की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, अगला जन्म मुझे पता नहीं क्या होगा। ये अलग बात है कि श्रीमद् भागवतम में दिया कि अगर एक भक्त है तो उसकी कितनी योनियों के ऊपर भी भगवान कृपा करते हैं, पर अपने धर्म को निभाने के लिए वो पीछे पड़ते हैं कि उनके ऊपर भी आप कृपा करो। तो आप सबसे प्रार्थना कि जिनके मां बाप हैं, हम लोग अपने सेवा करते हुए अपना समय निकाले, जो ब्रह्मचारी हैं वो समय निकाले, अपना टाइम लें और अपने माता पिता की सेवा में लगे। जो गृहस्थ में है उनका और ज्यादा पता है, अपनी पत्नियों के और उसकी सेवा उनकी बातों में ना कर अपने माता पिता को ना करें, नहीं तो फिर हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक हो जाएगी। इस चीज को हमें और ध्यान देना चाहिए। आगे आखिरी की 3 लाइन है, इस प्रकार जो मनुष्य जीवन के उद्देश्य को नहीं मानता, इस मानव स्वरूप का सदुपयोग नहीं करना नहीं जानता, वो 100 वर्षों में से 70 वर्ष ऐसे ही गवा देता है। 100 वर्ष का जो जीवन है वो ऐसे निकल जाता है। ब्रह्मा जी का भी ऐसे 100 वर्ष का जीवन बताया जाता है, पर उनके जो 1 सेकेंड है वो हमारे 1,00,000 साल के बराबर होते हैं। जब ब्रह्मा जी का 1 सेकेंड बीतता है वो 1,00,000 साल यहां से बीतते हैं। नॉर्मल कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो 12 घंटे हैं वो 10 जो है 14 मनवंतर के अनुसार होते हैं। 14 मनवंतर को अगर हम लेके मल्टीप्लाई करें और फिर 3600 से डिवाइड करें, मतलब 60 मिनट और 60 सेकंड से, तो कैलकुलेशन सिंपल आ जाएगी कि 1 सेकंड जब ब्रह्मा जी का बीतेगा तो वो किसके बराबर होगा, 1,00,000 साल के बराबर। तो हमें ये बहुत ध्यान पूर्वक देना चाहिए कि पावर ऑफ टाइम क्या है। आप अभी ध्यान करो कि मैं अभी छोटा बच्चा था, अभी मैं जॉब कर रहा था, अभी मैं कॉलेज में था, और अब देखो मैं कहां पर आ गया हूं। समय इतनी स्पीड से निकलता हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं कालोस्मि अहम, मैं काल के रूप में हूं, मैं हर सेकंड में अपना बिता रहा हूं। इसमें शब्द आ रहा है श्रीमद् भागवतम के अंदर कैशोर, कृष्ण भगवान के जीवन के अंदर भी ये अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था है बाल्यावस्था, दूसरी है पौगंड अवस्था, तीसरी है कैशोर अवस्था। तो पहले जो 3 साल होते हैं वो एक तरीके से बाल्यावस्था मानी जाती है भगवान कृष्ण की, और ऐसी अवस्था है कि भगवान कृष्ण के उस रूप के ऊपर ही सारा ध्यान यशोदा माता का रहता है। तो अगर हमें चिंतन करना है तो बाल्यावस्था और किशोर अवस्था के बारे में हम चिंतन करें भगवान कृष्ण का। अगर हमें चिंता में ही अपने आप को बिताना है तो इससे अच्छा कुछ चिंतन है ही नहीं। अगर कैशोर अवस्था जिसमें इसमें बताया जा रहा है उसमें में ध्यान लगाना है तो कृष्ण से अच्छा कुछ है नहीं। 15 साल 9 महीने और 7.5 दिन के बाद भगवान का आगे उम्र ही नहीं बढ़ती है। नव यौवनम, जब भगवान नव यौवन के रूप में रहते हैं, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा है तो भगवान की उम्र रफली 125 साल के आसपास है, उनके पुत्र के भी पुत्र हो गए हैं, और भगवान का रूप कितना सुंदर है। और भगवान उसी तरह जब छोटे रूप में होते हैं तो सो रहे होते हैं तो यशोदा माता को तो उनको देखकर उनको उठाने का मन तक नहीं करता है, पर रह नहीं पाती हैं। वो सो रहे हैं तो उनको गोद में उठाती हैं और उनको प्रेम करती है, फिर उठ ना जाए फिर उनको जमीन उसको पालने में रख देती है। नंद बाबा को यह देखकर बड़ी चिंता हो जाती है कि मेरा बच्चा जो है अब गोपाल के अवस्था तक पहुंच गया है। गोपाल की अवस्था मतलब गऊओं को चराने की, पालने की। पहले भगवान का प्रमोशन होता है, भगवान पहले वत्सपाल होते हैं। वत्सपाल मतलब बछड़ों को चराने के लिए, और गोपाल मतलब गौओं को चराने के लिए। तो शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान जब वत्सपाल होते हैं और गोपाल के रूप तक पहुंचते हैं तो नंद बाबा का दिल बहुत ही ज्यादा बैठरा होता है। एकदम मेरे बेटे को जंगल में जाना पड़ेगा, मेरे पुत्र को वहां पर कैसे कैसे जंगली जानवरों के बीच में रहना पड़ेगा, उसके कोमल कोमल पांव के अंदर के का जो पांव है वो कैसे कांटों के ऊपर भी जाएंगे, ये तो बड़ा मुश्किल है देखना। तो बोलते नहीं पुत्र, अभी तुम मत जाओ, अभी तुम तैयार नहीं हो। तो भगवान कृष्ण अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल करते हैं। कौन सा हथियार? अश्रु। भगवान कृष्ण भी रोते हैं, एक छोटे बालक की तरह एक कोने में चले जाते हैं, दीवार के साथ अपना मुंह लगाकर रोना शुरू कर देते हैं। कैसे नहीं जाऊंगा, मुझे जाना है। आप परिभा चिंता नहीं करते हो कि वो अपने पिता को उस आनंद को देना चाहते हैं, वात्सल्य का आनंद देना चाह रहे हैं। भगवान रो रहे हैं, जिससे डर भी डरता है, जिससे अश्रु भी कांपता है आने के लिए सामने, वो भगवान अपने अश्रु धार से पूरे नंद भवन को गीला कर रहे हैं भगवान कृष्ण, और आनंद दे रहे हैं नंद बाबा को। नंद बाबा का दिल भरता जा रहा है, पर उसकी जुदाई को नहीं देख सकते कि वो वहां पर जाएगा, और उसके कष्ट को नहीं समझना चाह रहे भगवान को। जो नंद बाबा उनके कष्ट भी उनको हो रहा है कि कैसे वहां पर जाएगा, दोनों तरफ से फंस रहे हैं। अब क्या करें? तब तक विचार विमर्श कर रहे होते हैं कि एक परेशानी और आ जाती है। अब गौए भी जो है वो भी जाने से मना कर देते हैं, अगर भगवान कृष्ण नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, स्ट्राइक। अगर कृष्ण जाएंगे तो हम जाएंगे, नहीं तो हम भी आज कहीं बाहर नहीं जाएंगे। पूरे खींच रहे हैं, गोप बालक खींच रहे हैं, सबके सब गाय को लेके जा रहे हैं, बछड़ों को सामने लेके जाते हैं कि बछड़ों को देख के तो पीछे आएंगी, तब भी नहीं आ रही है। अगर कृष्ण को नहीं भेजा तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण परमात्मा रूप में उनके हृदय में भी है। वो भगवान कृष्ण को अपने वात्सल्य के रूप में देखती है, वात्सल्य के भाव होता है सारे गौ माता का। और आज उनको ये आनंद मिला है कि कृष्ण और उनके बीच में इस संसार के अलावा कोई और नहीं होगा। जब जंगल में केवल कृष्ण ही मुरली बजा रहे होंगे, कृष्ण ही हमारे नाम को पुकार रहे होंगे और हम कृष्ण को ही तकते रहेंगे, उसके अलावा हमारे को और कुछ कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, इससे अच्छे और क्या बात होगी। इसलिए सबके सब एकजुट होकर कह रहे थे कि हम कृष्ण के अलावा नहीं जाएंगे। तो ऐसी लीलाओं का अगर हम चिंतन करते हैं, भक्तों के बीच में बैठकर और कृष्ण भावना भावित होते हैं, 16 माला का माला करते हैं, चारों नियमों का हम पालन करते हैं, तो हमारा क्या होता है कि हमारी चेतना पूरी तरह से कृष्ण भावित रहती है, हमें संसार के अंदर और कुछ चीजों में आनंद नहीं आता। टीवी महाराज हमें दूर दूर से हमें नमस्कार हम करते हैं उनको, फिर नहीं तो उसमें नहीं, टीवी के अंदर तो महाभारत देखते हैं, महाभारत में क्या हो गया? महाभारत तो बहुत अच्छी चीज है, पर महाभारत के बीच में जो एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं उसका क्या होता है? और महाभारत भी जो बताते हैं वो बहुत ही ज्यादा उनमें गलतियां होती हैं, और वो क्योंकि वो अपने प्रसन्नता के लिए और टीआरपी रेटिंग के लिए वो किए जाते हैं, तो उसमें भी भक्तों के साथ ही हमें समझनी चाहिए, तो अन्यथा हम समझ नहीं पाएंगे। नहीं तो गांधारी के चरित्र को इतना खराब दिखा दिया वहां पर कि आज तक ऐसा चरित्र नहीं होता। मैं तो हैरान हुआ जब कुछ लोग मुझे चर्चा कर रहे थे, क्या धृतराष्ट्र ने गांधारी को धक्का दिया, लात मारी, ऐसे कुछ किया कि नहीं तू जानबूझ के ऐसे कर रही है? बिल्कुल गलत उसमें दिखा रहे महाभारत पर, मैं हैरान हो गया सुन के। गांधारी ने जो अपने आंखों में पट्टी बांधी तो धृतराष्ट्र तो कृतज्ञ हो गए थे। महाभारत में बताते कि धृतराष्ट्र के अश्रुओं से तो आंसू निकल रहे थे कि मेरी पत्नी की स्थिति कितनी ऊंची है। श्री प्रभुपाद भागवतम में बताते हैं आदर्श नारियों में गांधारी, द्रौपदी, सती माता, ये सबसे, और लक्ष्मी माता सबसे ऊपर मानी जाती है, जो ये सोच लेती है कि मेरी आंखें होते हुए भी कहीं मेरे ऊपर ये अंदर घमंड ना आ जाए, एद मान ना आ जाए कि मैं अपने पति की आंखें बन के पति को रास्ता दिखा रही हूं। अब लोग बोलेंगे ये क्या बात हुई, कम से कम वो पति को गिरने से बचाएगी, पति को आगे बढ़ाने बचाएगी, पति के दो हाथ बन जाएगी, पति की दो आंखें बन जाएंगी। पर ये पत्नी की और स्त्री की सबसे महान गुण होता है कि वो अपने पति को गुरु मानती, अपने पति के गुरु नहीं बनना चाहती है। गांधारी का व्यक्तित्व इतना ऊंचा है, वो अलग बात है कि बाद में गंधारी जो है अपने प्रेम में बहुत ही ज्यादा हो जाती है और कृष्ण भगवान को अंत में कहीं कहीं में बताया गया कि वो श्राप भी देती है, पर वो भी भगवान कृष्ण उनको तब भी उस पर कृपा मानते हैं। ऐसी बात नहीं कि भगवान कृष्ण नहीं मानते, भगवान कृष्ण की लीला में संलग्न भी है। तो हम यहीं पर कथा को विराम देते हैं क्योंकि और बहुत सारी बातें हैं तो हम आगे नहीं लेके जा पाएंगे। तो आप सब लोगों से प्रार्थना है कि किसी का कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं, या जैसे चीता मित्र प्रभु ने एक नई पद्धति शुरू करी है कि वो प्रश्न पूछते हैं, मैं भी प्रश्न पूछूंगा, आप लोग उत्तर देना। कितने लोग सो रहे थे उतना पता चल जाएगा जितने लोग उठे थे। किसी का कोई प्रश्न है? जी
भागवत में आता है कि जो भी भगवान मुकुंद की शरण ग्रहण करता है वो सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है,
सभी प्रकार के
ऋणों से मुक्त हो जाता है। तो फिर एक ब्रह्मचारी के लिए और खासकर एक सन्यासी के लिए जो पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगा है, तो इसके लिए मतलब ऑब्लिगेशन है कि वो अपने माता पिता के लिए?
कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, बिल्कुल सही बात है। प्रभुपाद जी ने भी इसका बहुत बार उत्तर दिया हुआ है कि ब्रह्मचारी और अगर पूरी तरह भक्त बन जाते हैं तो उनको नहीं होता, पर ये उन लोगों के लिए है जहां पर माता पिता और हम लोग जो ऋण की बात कर रहे हैं, अगर वो भक्त नहीं है, अगर वह भक्त है और भक्ति में बाधा डालते हैं और बहुत ज्यादा परेशानियां करते हैं, तब जाकर हमें उन स्थितियों को समझना चाहिए। अब जैसे प्रभुपाद जी के समय भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज जो है वो विदेश में है और उनके पिता का क्या कहते हैं, उन्होंने शरीर त्यागा है, तो प्रभुपाद कहते हैं तुम इतनी दूर जाओगे और सब करोगे तो पिंड दान और इन सब दानों की भी आवश्यकता नहीं है, तो कोई चीजों की आवश्यकता नहीं होती है। पर यह यथार्थ स्थिति बताई जाती है कि हमारा जो एक स्वाभाविक स्थिति है कि माता पिता ने हमें इतना ऊपर तक पहुंचाया है, इस कृष्ण भक्ति का मौका दिया है ना, वो पिता और माता की कृपा से हम लोग को मिला हुआ है और हम उनको निग्लेक्ट ना करें, ये बताया गया, उनको भी भक्ति में लगाने का प्रयास करें, उनकी भी सेवा करने का प्रयास करें, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये नहीं, दोनों चीजों को साथ साथ आगे बढ़ाते हुए करें। पर इस चीज को हमें और ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि जो इन श्लोक से मुझे थोड़ा सा ये रियलाइजेशन हो रहा था कि हाँ इस चीज को भी आगे बल दिया जाए कि माता पिता की भी स्थिति जितने ग्रस्त जीवन में भी जरूरी है उतने ब्रह्मचारी। ऐसे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण महाराज ने भी इस बात को बहुत बल दिया, बहुत सारे भक्त ऐसे तो उनको जबरदस्ती प्रभुपाद को महाराज बोलते हैं कि तुम घर जाओ और अपने माता पिता से भी मिलो, उनको अकेला ना लगे, उनकी भी सेवा करो। ये चीज हमें साथ साथ जोड़ने में आवश्यक है। और कोई प्रश्न? कोई प्रश्न है? जी जी
मेरा ये प्रश्न था, अभी आपने लास्ट में जब गांधारी जी का जब प्रसंग आप बता रहे थे तो उसमें आपने गांधारी जी को रिलेट किया कि वो अपने आप को सुपीरियर ना माने, ऐसी मतलब उनके अंदर फॉल्सी को ना जनरेट हो, इसलिए उन्होंने अपनी आईज को क्लोज किया। तो साथ में आपने एक वर्ड और यूज किया था, वो अपने पति को गुरु के समान मानते थे, तो वो जो गुरु शब्द आप यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं तो उसका क्या अभिप्राय है?
बहुत सुंदर प्रश्न, बड़ा अच्छा, ये माताओं के लिए बहुत आवश्यक है समझना कि शास्त्रों में प्रभुपाद जी इसका बोलते हैं पति ही गुरु हो, पति गुरु ऐसे बोला जाता है, पति देव बोलते हैं, पति देव के समान है, पति गुरु। जो कृष्ण भक्त है वो जो है वो कैसे है, पति है वो क्या है, गुरु के समान है। और यहां तक श्रीमद् भागवतम में कृष्ण भगवान गोपियों को भी बताते हैं कि जब वो उनसे मिलने के लिए आती है रात्रि में तो ये भी बोलते हैं अगर पति कृष्ण भक्त है, अगर भक्ति में है, तो अगर वो कुकर्म भी करता है, बहुत गलत काम भी करता है, ऊंचा भी बोलता है, डांटता भी है, मारता तक भी है, मैं क्षमा चाहता हूं बोलने के लिए, अगर स्थिति इतनी खराब भी है, पर उसमें कहीं ना कहीं कृष्ण भक्ति पूर्ण रूप से दिखती है हम लोगों को, स्वाभाविक है मारना अपने आप बंद हो जाता है, डांटना अपने आप कम हो जाता है, वो कहना नहीं है, पर ये मतलब है तब भी हमें उनको त्यागना नहीं चाहिए, उसकी बात को हमें कब वाणी से भी नहीं त्यागना चाहिए, शरीर से भी नहीं त्यागना चाहिए, मन से भी नहीं त्यागना चाहिए। पति की स्थिति जो है वो गुरु के रूप में हर वक्त ही माननी आवश्यक है। आंखों में ना हो, अगर आंखें ना भी हो तब भी रास्ता दिखाने के लिए वचन काफी रहता है। शास्त्रों में तो यहां तक बताया गया है कि पत्नी को की स्थिति को देख के पता चल जाता था कि पति घर पर है या नहीं है। अगर पति घर से बाहर चला गया होता है तो स्त्री श्रृंगार नहीं किया करती थी, उसके वस्त्र मटमैले हो जाया करते थे, स्त्री के उस रूप के हिसाब से पता चल जाता था कि उसका पति घर पर ही नहीं है। भगवान कृष्ण पहले स्कंद के अंदर यह बताते हैं कि हे द्रौपदी तुम्हारे बालों को जिसने पकड़ा था तुम, मैंने क्या किया कि ऐसे लोगों के जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया था बालों का, उन सब के बाल खोल दिए। इसका मतलब क्या है कि स्त्री जो है अपने बालों को हर वक्त बांध के रखती थी जो विवाहित हुआ करती थी, और जिसका पति शरीर छोड़ देता था वही अपने बालों को खोल के रखती थी। और आजकल तो बाल ही बाल पता ही नहीं चलते कहां पे खुले रहते, कब खुले हैं कब नहीं खुले हैं, सब बराबर हुआ करता है। ऐसी आदर्श स्थिति हुआ करती थी। पत्नी अपने पति के बिना उसके सोने से के बाद में सोया करती थी और उठने से पहले उठ के सेवा किया करती थी और उसके चरणों को दबाते हुए सुलाती थी। आजकल बिल्कुल कलयुग में विपरीत है, पति पांव दबाते हुए पत्नी को सुलाएगा। कलयुग है, इसमें कुछ वो नहीं कह सकते, कलयुग का और आगे बढ़ता रहेगा। 12वें स्कंद में बताया गया कि मां बाप को घर पे रखते नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली शुरू हो जाती है, ज्वाइंट फैमिली बंद हो जाती है। तो इस तरह से ये सब बातें हुआ करती है। पर पति को गुरु के रूप में, पति गुरु हो ऐसे बोला जाता है, पति गुरु पति देव इस तरह से बोला जाता है। पर अगर पति भक्ति में, नहीं तो फिर मीराबाई वाली स्थिति बहुत ऊंची होती है। मीराबाई क्या बोलती है कि पति को परमेश्वर मानना जरूरी है, पर जो परमेश्वर को पति मान ले उसके लिए पति की क्या आवश्यकता है। मीराबाई की स्थिति इतनी थी कि वो पति जो था भक्त नहीं था, इस तरह से बात मानी जाती, पर वो भाव एक अलग था। ठीक, और कोई प्रश्न किसी का नहीं तो मैं कुछ प्रश्न करूं। जी, तो 5 साल की अवस्था के बारे में हमने चर्चा करी कि भक्ति शुरू होनी चाहिए। भागवतम में 3 उदाहरण दिए, कौन कौन से 3 उदाहरण थे? जी माता जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हरी बोल। जो प्रभुपाद जी ने यहाँ पर उदाहरण दिया कि नाता नाती और इन्हीं के अंदर अपनी संपत्ति को बचाने के चक्कर में अपना जीवन त्याग देते हैं और उसी में अपना ध्यान देते हैं, तो हमने कुछ उदाहरण लिए। तो एक उदाहरण दिया था वो व्यक्ति का जिसने नारद मुनि जिनको अपने साथ में लेके जा रहे थे, तो वो उसको जो है 2 अवस्थाएं उसकी, उसने अलग अलग योनियां बदली करी थी। तो कौन कौन सी योनियां बदली करी थी? जी ब्रो जी, जी जी, धन्यवाद आप। हरी वो, और वो जो व्यक्ति के बारे में हमने चर्चा करी कि जो 7 पीढ़ियों के बारे में अपना चिंता करते हुए वो 8वीं पीढ़ी के बारे में चिंता कर रहा था, तो उसको ब्राह्मण ने क्या उसको संदेश दिया, जो ब्राह्मण था उसको उसने क्या संदेश लिया? जी माता जी, बहुत सुंदर। हरी वो, तो प्रभुपाद जी ने रिटायरमेंट के बारे में जब अपने शिष्यों को बताया तो कमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने, जो हमारे बहुत बड़े सन्यासी रह चुके, उन्होंने क्या उत्तर दिया कमाल कृष्ण महाराज जी ने? जी गुरु जी, हम कभी हो ही नहीं सकते भरी वो, हम कभी रिटायर होने का मतलब ही नहीं, यही भक्तों के संग में ही हम करेंगे, यही हमारा मायापुर है और यही हमारा वृंदावन है, मायापुर वृंदावन ट्रस्ट, ट्रस्ट इन मायापुर वृंदावन। और आखिरी प्रश्न जो है, कुमार जो पुंडरिक जो थे वो किस मुनि के आश्रम में गए थे? कोई और भक्त? जी गुरु जी, कुक्कुट मुनि। तो उन्होंने क्या देखा कुक्कुट मुनि के आश्रम में? कौन सी 3 देवियां आई थी जो सेवा कर रही थी? हाँ जी माता जी, सब हाँ जी हाँ जी। तो वो क्या कर रही थी? जी, वैकुंठ के अंदर गंगा जी लक्ष्मी जी जो है वो कृष्ण की पत्नी है और सरस्वती है, तो गंगा जी को श्राप दिया था कि तुम नदी बन जाओ, सरस्वती माता ने। तो गंगा जी बहुत दुखी हुई थी, बहुत रो रही थी और ये श्राप दिया कि तुम्हारे इसमें पापी जो है वो स्नान करेंगे। ये वैकुंठ, ये लिखा हुआ है पद्म पुराण में, कुछ शास्त्र में लिखा हुआ है। इसलिए गंगा जी जो है वैकुंठ से भगवान विष्णु की पत्नी होते हुए भी यहाँ पर आती है। तो फिर वो जब बहुत दुखी और रो रही थी कि मैं इतनी दूषित हो जाऊंगी, इतनी पापी हो जाऊंगी, पापिन हो जाऊंगी, तो मेरा उद्धार कैसे होगा? तो विष्णु भगवान बोलते हैं कि जब भक्त आके तुम्हारे तटों पे भगवत कथा करेंगे और तुम्हारे जल में स्नान करेंगे तो तुम, तो उसी तरह से वो भक्त जो है सारे के सारे स्नान करते हैं और गंगा जी को आनंद देते हैं। ठीक, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की, भक्त वृंद की, श्री प्रभुपाद की जय।